नमस्कार, मैं सौरभ। डीएनए में आपका स्वागत है। आज डीएनए में हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि के उस मामले की, जिसमें करीब 130 दिन बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। करीब 4 महीने पहले अपनी पार्लियामेंट मेंबरशिप गवा चुके राहुल गांधी को अब दोबारा संसद में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब राहुल गांधी का केस से पूरी तरह से बरी हो जाना है? क्या अब राहुल गांधी बड़ी ही आसानी से संसद में दोबारा आ सकेंगे? क्या मोदी सरनेम का मजाक उड़ाने से जुड़े इस केस से उन्हें राहत मिल गई है? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम आपको राहुल गांधी को मिली राहत के बाद कांग्रेस में छाई खुशी की झलक भी दिखाएंगे। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। अब 4 साल बाद आर्टिकल 370 से मुक्त कश्मीर में माहौल क्या है, ये जानने और समझने के लिए जी न्यूज ने कश्मीर की डेवलपमेंट रिपोर्टिंग की है। कश्मीर से हमारा ये पॉजिटिव डीएनए टेस्ट आपको जरूर देखना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में कुछ नहीं बदला है, कश्मीर का कुछ भला हुआ ही नहीं है। और इसके बाद हम आपको देश के सबसे प्रदूषित जिले का डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। अगर किसी को लगता है कि दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित जगह है, तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम आपको मध्य प्रदेश के सिंगरौली लेकर चलेंगे, जो दिल्ली से भी 3 गुना ज्यादा प्रदूषित जगह है। और वहां हवा, जमीन और पानी तीनों इतने ज्यादा प्रदूषित हैं कि वहां रहने वाले लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। आज हम सिंगरौली में जहरीले वातावरण की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और इस प्रदूषण की वजह का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले विश्लेषण की। हमारे देश के नेतागण अक्सर अपने भाषणों में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। राहुल गांधी इसका सबसे ताजा उदाहरण थे। कर्नाटक के कोलार में हुई एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने जोश में आकर बोल दिया था कि इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। देखा जाए तो इस बयान में जोश तो था ही, इसके अलावा इसमें मोदी सरनेम वाले लोगों पर कटाक्ष भी था। देश के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी कौन से मोदी की तरफ इशारे में कटाक्ष कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ये नहीं जानते थे कि उनका ये बयान उनकी संसद सदस्यता छीन सकता है। इसी वर्ष 23 मार्च को राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में अल्पविराम आ गया था। दरअसल उन्हें मानहानि केस में सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 वर्ष की सजा सुना दी थी। इस फैसले के अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई थी। पिछले करीब 130 दिनों से राहुल गांधी कांग्रेस के एक सामान्य नेता बन गए थे, वो एमपी नहीं रहे थे। कर्नाटक के वायनाड की जनता ने उन्हें चुनकर संसद में भेजा था, लेकिन इस केस ने राहुल से उनकी संसद सदस्यता तो छीनी ही थी, वायनाड की जनता से उनका प्रतिनिधित्व भी छीन लिया था। लेकिन आज का दिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए खुशी का दिन है। दरअसल आज इस मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी मानहानि केस से बरी हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम आपको समझाते हैं कि कैसे राहुल गांधी अभी भी इस केस में आरोपी बने रहेंगे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता दोबारा वापस आ सकती है। देखिए, राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी माना था और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी। दोषी पाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। सजा के ऐलान को लेकर राहुल गांधी के वकीलों ने सेशन कोर्ट का रुख किया था। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन मानहानि केस में उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई। सेशन कोर्ट के बाद राहुल के वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी राहुल की सजा पर रोक को बरकरार रखा, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई। दोष सिद्धि को खारिज करने की अपील लेकर राहुल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी को मानहानि केस से बरी कर दिया गया है। तो इससे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी को इस केस से राहत तो मिली है, लेकिन ये केस उनके जी का जंजाल बना रहेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। जैसे मानहानि का ये केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए सेशन कोर्ट का फैसला आने के बाद ये तय होगा कि राहुल गांधी के साथ क्या किया जाएगा। सेशन कोर्ट का फैसला आने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच सकता है। अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला आया तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, यानी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी है। लेकिन इस सब के बावजूद दोष सिद्धि पर रोक लगने पर राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस और INDIA में खुशी की लहर है। वजह यह है कि अब राहुल गांधी दोबारा से संसद में बैठने के योग्य हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा बहाल हो सकती है। दोष सिद्धि ही राहुल की राजनीतिक राह में सबसे बड़ा रोड़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। इस फैसले से एक लाभ ये भी है कि अब राहुल गांधी वर्ष 2024 या उसके बाद के चुनाव भी लड़ सकेंगे। अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी करीब 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाते, यानी एक तरह से वो देश की मुख्य धारा की राजनीति से गायब हो जाते।
देखिए, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में क्या है, दो तरह का तरह होता है। एक तो आपकी जो है ना, जो सजा आपकी निलंबित हो जाती है, दूसरा आपका दोष सिद्धि आपकी निलंबित हो जाता है। इस केस में क्या था, जब सेशन कोर्ट वो गए थे तो उनकी जो सजा है वो तो निलंबित कर दी थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनकी जो दोष सिद्धि वाला सेंटेंस है उसको उन्होंने निलंबित नहीं किया था। उसके बाद वो गुजरात हाईकोर्ट गए थे, गुजरात हाईकोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने 125 पेज का जन निर्णय दिया, लेकिन उन्होंने कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। उसके अगेंस्ट जब यहां पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए तो वो SLP आज सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने उसमें जो 2 साल की सजा दी है उसमें उन्होंने उसका बेसिक निविदा, 2 साल की जो मैक्सिमम सजा है डिफेमेशन के केस में, वो आखिर उन्होंने क्यों दी है। आज कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम मेरिट्स पे कुछ नहीं दे रहे हैं, जिससे किसी भी पक्ष को के जो है ना इसका नुकसान या फायदा हो। हम सिर्फ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ हमने कन्विक्शन को आज निलंबित किया है, लेकिन बाकी जो अपील जो उनकी पेंडिंग है उस दोनों पार्टीज को राइट है वहां जाके एक्सपेडाइट की एप्लीकेशन, सेशन कोर्ट में जाके अपने एक्सपेडाइट की एप्लीकेशन दे दें और उस पर सुनवाई हो। जब तक वो उसका फैसला नहीं आता है तब तक कन्विक्शन पे स्टे है, तो उस ये मानना चाहिए कि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो बरकरार हो सकती है और वो कंटिन्यू करेगी। और आगे भी मान लीजिए इलेक्शन पहले होते हैं तो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने में कोई बाध्यता, कानूनी बाध्यता नहीं आएगी।
सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद राहुल गांधी एक बार फिर जोश के साथ संसद में आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को ये उम्मीद होगी कि उनकी संसद सदस्यता जल्दी बहाल कर दी जाएगी। वो ये भी मानकर चल रहे होंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव की बहस और वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की सदस्यता बहाली का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन लोकसभा स्पीकर एक निश्चित समय में उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला लोकसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गहन अध्ययन के बाद ही लेंगे। यानी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली में राजनीतिक अड़ंगा आ सकता है। वजह यह है कि सदस्यता बहाली की समय सीमा को लेकर कोई नियम नहीं है। सदस्यता बहाली के लिए स्पीकर कितना भी समय ले सकता है। सदस्यता बहाली लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है।
देखिए, राहुल गांधी की जो सदस्यता का मामला है वो आज स्पष्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए पर रोक लगाई है तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब उनकी जो मेंबरशिप जो है लोकसभा की वो बहाल हो सकती है। उसके लिए उनके पास विकल्प है कि उनको लोकसभा सेक्रेटरीट में अपना प्रार्थना पत्र देना चाहिए। उस प्रार्थना पत्र ये कहना चाहिए जो कन्विक्शन है जिसको हम दोष सिद्धि कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो जो उनका पहला नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन उनकी उनकी सदस्यता खत्म की गई है उसको रिवर्स करके उनको दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्य करने की अनुमति दी जाए।
अब लोकसभा स्पीकर का गहन अध्ययन कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। इससे जुड़ा एक किस्सा भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। इस तरह के एक मामले में लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल एक बड़ा उदाहरण है। 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप की कवरत्ती जिला अदालत ने हत्या की कोशिश के एक मामले में मोहम्मद फैजल को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 13 जनवरी को उनकी लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई थी। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैजल ने केरल हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसने 25 जनवरी को उनकी दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की थी। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने लगभग 2 महीने तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उससे कुछ ही घंटे पहले लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। इससे यह पता चलता है कि लोकसभा सदस्य की बहाली को लेकर लिया जाने वाला फैसला स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। बहाली का फैसला लेने को लेकर लोकसभा स्पीकर समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। यही वजह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष तौर पर इसको लेकर टिप्पणी भी की।
राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे।
संसद सदस्यता की बहाली की जो बात आप लोग कर रहे हैं, क्या अंदेशा ये भी है कि इसको जानबूझकर टाला भी जा सकता है लंबा समय?
अगर आपके आंख की शर्म है, राजनीतिक सौहार्द्र है, मतभेद को मनभेद नहीं बनाते हैं, गणतंत्र में विश्वास करते हैं, तो आपने 3 महीने पहले जिस चीज में 24 घंटे लगाए मुझे निकालने में, तो कम से कम 48 घंटे में ये वापस तो बहाल करिए। ये तो मैं समझता हूं कि आम संतुलन की बात है। कोई ऐसा पूछीदा मामला कानून का नहीं है जिसमें आप जाके सुलह और सुझाव और ओपिनियन मांगेंगे।
मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई काफी रोचक थी। राहुल गांधी के वकीलों की कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा चलती रहे, इसके लिए दोष सिद्धि पर रोक लगना जरूरी था। वहीं दूसरे पक्ष की कोशिश थी कि दोष सिद्धि पर रोक ना लगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिरह के लिए दोनों पक्ष को 15-15 मिनट का समय दिया था। इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, जिसमें उन्होंने कुछ खास बातें रखी। जैसे उन्होंने कोर्ट से कहा कि अलग अलग जाति के लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, इनका कोई निर्धारित वर्ग नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि वो मुख्य मुद्दे पर आए, मुद्दा है दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगना क्यों जरूरी है। कोर्ट के कहने पर सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि 3 पेज की स्पीच में महज 1 लाइन है जिसको लेकर केस दायर किया गया है। ये केस भी उन लोगों ने नहीं किया है जिनके नाम भाषण में लिए गए हैं, बल्कि ये केस पूर्णेश मोदी ने किया था जिनके नाम का जिक्र भाषण में था ही नहीं। सिंघवी ने कोर्ट से ये भी कहा कि राहुल पर समाज के खिलाफ जाने वाला कोई भी अपराध दर्ज नहीं है, लेकिन इस केस में शिकायत करने वाले ने राहुल को अपराधी करार दे दिया है। राहुल के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो राजनीतिक विरोध की भावना से दायर किए गए हैं। दोष सिद्धि की वजह से राहुल गांधी संसद भी नहीं जा पा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद बारी आई महेश जेठमलानी की, जो पूर्णेश मोदी की ओर से मौजूद थे। महेश जेठमलानी ने कोर्ट में दलील दी थी कि राहुल के खिलाफ कई सबूत हैं। चुनाव आयोग का भी एक व्यक्ति इस केस में सरकारी गवाह है। जेठमलानी ने राहुल का पुराना भाषण दोहराते हुए कहा कि राहुल की मंशा मोदी सरनेम वाले समुदाय का अपमान करने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राहुल को अधिकतम सजा वाले फैसले की वजह से 1 सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी, इसलिए ये मामला केवल एक व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, ये उस सीट की मतदाताओं के अधिकार से भी जुड़ा है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज ने अपने आदेश में ये नहीं बताया कि अधिकतम सजा देने की जरूरत या वजह क्या है। इसके अलावा ये कोई ऐसा मामला भी नहीं है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हो। कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना कि राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं था और उनसे ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता के प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए अपना फैसला राहुल गांधी के पक्ष में सुना दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी संसद में खुद को और ज्यादा मजबूत स्थिति में मान रही है। हम आपको इस फैसले के बाद कांग्रेस और INDIA की खुशी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है।
हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई साबित हो चुके हैं। Thank you.
संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी।
हम सब में पूरी ऊर्जा आ गई है और पूरा उम्मीद थी न्याय की और न्याय मिला, सत्य की जीत हो रही है। आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे।
हमारा इतना कहना है कि राहुल जी का पार्लियामेंट वापस आने से मोदी जी को जो है ना इलेक्ट्रिक करंट लग गया है। अब मोदी जी कुछ दिन पहले हाथ हिलाते हुए पार्लियामेंट एंटर नहीं किए, अब मुझे नहीं लगता कि कभी पार्लियामेंट एंटर करेंगे क्योंकि राहुल जी वापस आ रहे हैं।
तो बिल्कुल ना धज्जियां उड़ा दी हुसैन जी की, तो उसको खारिज कर दिया हाईकोर्ट के फैसले को। हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में, क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहां कहेंगे कहीं चल रहे हैं कब रहे, ये काम हाईकोर्ट का पता है।
उन्होंने सिद्ध किया कि वो भारत जोड़ो यात्री नहीं बल्कि मोहब्बत के दुकान के वास्तविक व्यक्ति हैं जो अमेरिका या दुनिया के सामने मोहब्बत की दुकान की खुशबू भी खींच सकते हैं।
उम्मीद करते कि जिस तत्परता से पहले उनको डिस्क्वालीफाई करके उनकी मेंबरशिप उन्होंने रोक लगाई थी, उसी तत्परता से दोबारा उनको आने के लिए मौका दिया जाएगा।
सच्चाई सदा जीतती है और ये एक बात साबित करता है कितनी भी कोशिशें कोई करे राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए उसकी आवाज जीत रही।
कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का, अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता।
माफी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, मुझे लगता है जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक ही बात सही है कि ये जो दिलासा मिला है वो सही वक्त पे आया है। भारत जोड़ो हो या फिर अभी आप पूरे एक राजनीति की एक अगर पूरे देश में चित्र देखें तो ऐसे जो राजनेता है जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जो सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, उन पर दबाव लाया जा रहा है, यही एक शायद षड्यंत्र होगा और इसलिए आज जो दिलासा मिला है उन्हें, राहत मिली है, वो सही है।
बेहद खुशी है क्योंकि ये राहुल जी से संबंधित प्रयोग अगर सफल हो जाता तो अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में भी यही कोशिश करते। संसदीय लोकतंत्र में और अब तक के अपने इतिहास में मैंने किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं देखी थी और इसके बहुत दूर तक परिणाम होते हैं। मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से भी उनकी सदस्यता को फौरन बहाल किया जाए ताकि वो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में शामिल हों और जो उनके सरोकार हैं, जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने मणिपुर की भी पीड़ा देखी है, उस पर अपनी बात रख पाए।
देखिए क्लियर हो गया कि भाजपा लगातार असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके अपनाती है विपक्ष की आवाज को कुचलने को और बार बार सुप्रीम कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ती है। इंडिया मजबूत है, था और रहेगा। इंडिया से एनडीए डरती है और इंडिया इस बार बुरी तरह से पराजित करने वाली है एनडीए को। एनडीए को भय है।
मुझे बहुत खुशी है कि राहुल जी को इससे मिला और राहुल जी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे।
क्या इसका फायदा आपको लगता है INDIA को मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा।
कल 5 अगस्त है और ये तारीख अपने आप में बेहद खास है क्योंकि 4 वर्ष पहले इसी दिन मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। आर्टिकल 370 को लेकर सियासत भी होती रही है, एक वर्ग सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताता रहा है और जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल किए जाने की मांग भी करती रही। लेकिन सरकार का दावा है कि इन चार वर्षों में कश्मीर में कई बड़े बदलाव आए हैं और अब कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को छोड़ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है और इसीलिए आज हम कश्मीर पर सरकार के इन्हीं दावों का डीएनए टेस्ट तो करेंगे ही, बदलाव वाली इन डेवलपमेंट तस्वीरों का भी बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 5 अगस्त 2019 का अमित शाह का ये बयान फिर सुनना चाहिए।
मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।
अब कश्मीर पर फिर लौटते हैं और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की तस्वीर है और इसमें आप लाल चौक को तिरंगे के रंग में रंगा देख सकते हैं। कुछ वर्ष पहले लाल चौक में तिरंगा लहराने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था और वहां खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। ये तस्वीर दिखाती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में कुछ तो बदला है। सरकारी दावों के अनुसार अब माने तो घाटी पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है और अब वहां आतंकवादी घटनाओं में तो कमी आई ही है, पत्थरबाजी की घटनाएं भी ना के बराबर हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डेटा के अनुसार 5 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर में 683 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल के 148 जवान भी शहीद हुए जबकि 127 आम लोगों ने भी जान गंवाई। इस वर्ष अब तक 38 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं जबकि सुरक्षा बल के 13 जवान शहीद हुए और 9 नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आर्टिकल 370 हटाए जाने के अगले 3 वर्षों तक यानी वर्ष 2020, 2021 और 2022 में बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए गए जिसकी वजह से आतंकवाद का ग्राफ काफी कम हो चुका है और अब पुलिस को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं करने पड़ रहे। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 से 2019 तक जम्मू कश्मीर में 4766 आतंकी वारदातें दर्ज हुई थी लेकिन 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तक सिर्फ 738 आतंकी वारदातें दर्ज की गई हैं और इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं।
यू कैन सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग ऑन ग्राउंड। एज आई सेड टुडे द बॉयज एंड गर्ल्स दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट बिल्डिंग देयर कैरियर्स, दे आर मोर फोकस्ड अबाउट कैरिंग ऑन देयर स्टडीज, प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई हैव सीन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कमिंग अप। सो आई एम वेरी श्योर that the boys and girls who are focused on their career and their studies would do much better. Situation in terms of land order is much better. There is hardly any land order scenario being seen today. Situation on terrorist front, anti-terrorist operations have been very successful. Number of terrorist active now is the all-time low. There is hardly any terrorist activity left. Tourist flow all over Jammu Kashmir is unprecedented.
आतंकवाद के मामलों में कमी आने की वजह से कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है। श्रीनगर में इसी वर्ष G20 की बैठक का आयोजन भी हुआ और 2 दिवसीय बैठक का सफल आयोजन बताता है कि कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित है। आज जम्मू कश्मीर के लोग खासकर युवा भी मानते हैं कि उनका प्रदेश सही रास्ते पर है।
वायलेंस में बहुत ज्यादा कमी थी, बिकॉज वायलेंस कभी कश्मीरी था नहीं, वायलेंस वॉज ऑलवेज स्पॉन्सर्ड, इट वॉज नॉट, मैं ये कभी नहीं कहूंगा ये सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर वायलेंस यहां स्पॉन्सर्ड थी, बल्कि यहां के पोलिटिकल क्लास को हमेशा वायलेंस वॉज इट्स कैपिटल, उनका वायलेंस कैपिटल था वो, और उनके अपने कार्डर थे वायलेंस में, तो द वायलेंस वॉज बींग यूज नाउ जो माफ के रिगिंग के बाद, जो माफ की रिगिंग हुई 1987 में, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई कि वायलेंस कराओ और पावर में रहो और वोट हासिल करो, तो मुझे लग रहा है कि उसमें चेंज है, वायलेंस इज कमिंग, आई कांट से जीरो बट इट इज ड्रास्टिकली कमिंग डाउन, और आप किसी को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है कि जनाब वो उसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, उन्हीं परसेप्शंस के नाम पर यहां पे कश्मीरी को कश्मीरी का खून बहाते थे, वो अब वो कश्मीरी समझ गया कि सबसे ज्यादा वायलेंस का विक्टिम मैं रहा हूं, मुझे पार वालों ने भी इस्तेमाल किया, ओ, जो यहां के पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने भी इस्तेमाल किया।
ये घाटी में आए बदलाव की पहली तस्वीर थी, अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे, और ये तस्वीर बताती है कि घाटी में आतंकवाद के मामले तो कम हुए ही हैं, घाटी में अमन भी लौट रहा है। ये 26 जुलाई को श्रीनगर में निकाले गए मुहर्रम के जुलूस की तस्वीर है, और ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि ये जुलूस पूरे 30 वर्ष बाद निकाला गया था। 80 का दशक खत्म होते होते जम्मू कश्मीर आतंकवाद की चपेट में आ चुका था, धार्मिक कट्टरता और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि कश्मीरी पंडित और हिंदू ही नहीं शिया समुदाय भी इससे नहीं बच पाया था। वर्ष 1990 में मुहर्रम के जुलूस पर हमला हो गया, जिसके बाद इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन शियाओं को यहां से जुलूस निकालने की मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अब जब शिया मुसलमानों को 30 वर्ष बाद मुहर्रम का जुलूस निकालने का मौका मिला, तो ये दिन उनके लिए भी खास बन गया। और ये बदलाव कितना अहम है, इसे महसूस करने के लिए आपको श्रीनगर से हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए।
श्रीनगर की ये तस्वीर बदलते कश्मीर की तस्वीर है। करीब 3 दशक बाद जब श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस निकला, तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक बन गई। बीते 30 वर्ष से श्रीनगर के शिया मुस्लिम इस मौके का इंतजार कर रहे थे, और इसीलिए जब 8वें मुहर्रम को उन्हें उसी रास्ते से ताजिया ले जाने की मंजूरी मिली, तो ये लम्हा खास बन गया। जुलूस में शामिल लोग करबला की जंग में शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों को याद कर मातम मना रहे थे। महिलाओं की आंखें नम थीं, लेकिन इस मातम में भी एक सुकून छिपा था, सुकून इस बात का कि आखिरकार उन्हें एक बार फिर मुहर्रम का जुलूस निकालने और मातम की रस्म निभाने का मौका मिल सका।
आज पीस है, आज अमन है, आज शांति है, आज सुकून है, आज चैन है, आज अमन है।
आपको एक बदलता कश्मीर दिखता है?
बिल्कुल दिखता है, आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट भी है, पीस भी है, हर कुछ है।
ये खुशी की लहर दौड़ी हमारे पूरे शिया कौम में, और कई सालों से डिमांड थी, कई सालों से इश्यूज आ रहे थे। पिछली बारी गवर्नमेंट भी काफी सारे बहाने करके बता रहे थे कि शायद होगा नहीं होगा सिक्योरिटी थ्रेट्स से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बार गवर्नमेंट ने दिखाया कि अगर वो चाहे तो जुलूस निकल सकता है, और पूरा अमन तरीके से जुलूस निकला। गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफी सारा सपोर्ट मिला, और हमारे लोगों ने भी पूरा फॉलो किया जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसको लेकर बहुत खुश हैं।
سری نگر میں محرم کے جلوس کا نکلنا ہی بتاتا ہے کہ کشمیر صرف بدل ہی نہیں رہا ہے، آگے بھی بڑھ رہا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔
34 سال کے بعد یہ جو ریسٹرکشن ہوتی تھی پروسیشن جلوس پہ جو ہوتی تھی وہ انہوں نے پرسوں ہٹائے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں جس طریقے سے ہمارے اپ راجپال جی نے اس پروسیشن پہ جو بین ہوتی تھی ریسٹرکشن ہوتی تھی وہ انہوں نے اٹھائے، میں اس کا ویلکم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جموں کشمیر کے اب حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔
محرم کے جلوس آپ نے دیکھا، کہیں پہ کوئی غلط نعرہ نہیں لگا، کہیں پہ لوگوں نے کوئی وائلنس کے نعرے نہیں، کیونکہ یہ تصوف کی بات ہے، چاہے اہل جعفری کی تصوف کی بات ہے، عید میلاد اہل حنفیہ کا تصوف، تو اسی تصوف کو مارا گیا تھا صرف پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، تاکہ پولیٹیکل انٹرسٹ یہاں پہ رہے۔ ایک طرف وہ وائلنس استعمال کرتے تھے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پاور میں، دوسری طرف وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی مشینری یوز کرتے تھے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ہم نے محرم کا جلوس اوپن کیا تو یہاں پہ جی تباہیاں ہو جائیں۔ عام یہ لوگ گھوم رہے ہیں جلوسوں میں، لاکھ لاکھ کا جلوس نکلا، جو پروسیشن تھا محرم کا پروسیشن یا عید میلاد کا پروسیشن لاکھوں میں نکلتا ہے، تو کوئی وائلنس نہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ اگر 100 کشمیری جمع ہوں گے تو بھائی جناب ہندوستان کی دھجیاں اڑ جائیں گی، یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ یہاں کی رولنگ کلاس نے دیا تھا۔
اس دوران پورے سری نگر میں جلوس نکل سکے اس کے لیے پولیس اور پرشاسن کی طرف سے پورے انتظام کیے گئے تھے، اور یہ انہی تیاریوں کا نتیجہ تھا کہ صرف محرم کا جلوس ہی نہیں نکلا، اس دوران پورے سری نگر میں نہ تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی دقت پیدا ہوئی اور نہ ہی تناؤ کی کوئی خبر سامنے آئی۔
ایڈمنسٹریشن تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ لوگوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں نے ایسا کنڈیسیو ایٹموسفیئر بنا کے دیا ہمیں، تو ہمیں بھی ایزی ہو گیا ڈیسیجن لینا۔ اور سمبڈی رائٹلی سیڈ اٹس ڈیویڈنٹ آف دس پیس پروسیس، کیونکہ شانتی تھی، ساری چیزیں ہیں، سب لوگ اس کے پکش میں ہیں، تو ہمیں بھی پھر ڈیسیجن لینے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھا جس طرح کا جلوس نکلا اور اتنے شانتی پور، اور اس میں سب میں سب بدھائی کے پاتر، ٹریفک میں بھی ہم نے اس طرح سے انشور کیا کہ ٹائمنگ میں بھی نہ کیول جو ان کی انتظامیہ کمیٹی تھی وہ بھی اگری کی کہ لوگوں کو بھی دقت نہ ہو، اور ہم ٹریفک بھی ساتھ کے ساتھ کھلتے گئے تھے۔
یہ تصویریں بدلتے کشمیر کا پرتیک ہیں، یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کشمیر اب شانتی اور استھرتا کی دشا میں آگے بڑھ رہا ہے۔
34 سال بعد 8 محرم کے جلوس کو سری نگر کے پارمپرک راستوں سے گزرنے کی انومتی دی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں محرم کے جلوسوں میں لوگوں نے شرکت کی، چاہے پھر وہ 8 محرم کا جلوس ہو یا پھر 10 محرم کا، لیکن محفوظ بات یہ رہی کہ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ سری نگر سہیت پورے کشمیر کے راستوں پر دکھی، لیکن نہ تو کہیں کوئی ہلسا ہوئی اور نہ ہی کوئی اپریہ گھٹنا گھٹی۔ ایسا ہونا اپنے آپ میں ایک بدلاؤ درشاتا ہے۔ کیمرہ پرسن فاہم منظور کے ساتھ خالد حسین، زی میڈیا کشمیر۔
آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد جب گھاٹی میں آتنکواد میں کمی آئی اور شانتی لوٹی تو ٹورسٹ بھی لوٹنے لگے۔ جموں کشمیر میں شانتی لوٹنے کا سب سے زیادہ فائدہ وہاں کی ٹورزم انڈسٹری کو ہوا ہے، اور اسی لیے اب ہم جموں کشمیر میں بدلاؤ کی تیسری تصویر کا وشلیشن کریں گے، کیونکہ بیتے کچھ ورشوں میں بڑی سنکھیا میں سیلانی جموں کشمیر پہنچے ہیں۔ سرکاری ڈیٹا کے انوسار ورش 2021 میں کل 1,13,00,000 سیلانی جموں کشمیر آئے تھے، جبکہ ورش 2022 میں یہ سنکھیا بڑھ کر 1,88,00,000 تک پہنچ گیا، اور 2023 یعنی اس ورش جون تک 1,27,00,000 پریٹک جموں کشمیر آ چکے ہیں، ان میں 17,000 ودیشی پریٹک بھی شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، دھارمک ٹوریزم میں بھی کافی بڑھوتری ہوئی ہے، اور آنکڑوں کے انوسار اب تک 4,00,000 سے بھی زیادہ ٹورسٹ امرناتھ یاترا کے لیے کشمیر پہنچ چکے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ آج ہم نے آپ کے لیے جموں کشمیر کے ٹوریزم پر ایک وشیش رپورٹ تیار کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ رپورٹ دیکھیں اور اس بدلاؤ کو خود محسوس کریں۔
Oh, my God. मोदी जी ने 370 हटाया है, जिससे पहले क्या था कि लोगों के मन में डर बहुत रहता था कि कश्मीर जाएंगे वहां पे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो है कि पहले डर बहुत लगता था, अब डर नहीं है लोगों में। तो हम लोग भी पहली बार आए हैं, डल लेक का नजारा ले रहे हैं, हम भी पहली बार ही आए हैं, तो जो डर था पहले अब डर नहीं है, इसीलिए हम भी यहाँ पे आए हैं।
कैसा लगा आपको?
बहुत अच्छा लगा, अभी पहलगांव भी घूम के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि हम लोग हर बार हर साल आने की यहाँ कोशिश करते रहे, और जो हमारे इष्ट मित्र हैं वो भी पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे आए हो कैसा लग रहा है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी पहले आतंकवादी की वो कैसी क्या, हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं लगा यहाँ पे, बहुत पहले से बहुत बेटर लग रहा है।
यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव है, इतना सहयोग देते हैं कि हम बिल्कुल भाई जैसा लगते हैं सब, और कोई भी ऐसा माहौल ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ वैसा लगे कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। और यहाँ के लोगों का जो सहयोग है बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ तो वादियाँ ऐसी है ही हैं जिसे जन्नत कहा जाता है, कश्मीर को तो जन्नत ही है। और हमें तो देश के वासियों से कहना है कि सबको यहाँ आना चाहिए और घूमना चाहिए कश्मीर में। कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ भारत देश का ये सम्मान मान और मुकुट है ये, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं माहौल है कि आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, यहाँ के सभी लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं।
पिछले 2.5 साल से टूरिज्म वाज एट हाईएस्ट लेवल, बहुत ज्यादा अच्छा टूरिज्म आया, इवन दो लास्ट ईयर वाज बेटर देन दिस ईयर, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री में रिवाइवल हुआ ये इन्हीं 2.5 साल से हुआ, अदरवाइज दिस इंडस्ट्री वाज टोटली शैटर्ड। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, टू द ऑलमाइटी दैट ये गो पॉसिबल एंड इट हैज हैपेंड।
चाहे फिल्मों की शूटिंग हो या टूरिस्ट का आना हो, उसमें रिकॉर्ड मात्रा में लोग आए हैं, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लोग भी आए हैं। G20 का यहाँ मीटिंग होना और उसके बाद जो यहाँ से जो एम्बेसडर्स हमारे यहाँ के जो गए हैं वापस, उन्होंने वहाँ पे भी प्रचार प्रसार किया है, उसी का ही है कि इवन अमरनाथ यात्रा में भी अब फॉरेन टूरिस्ट जो है आ रहे हैं। लास्ट ईयर 1,88,00,000 के करीब आए थे, इस साल आपको भी पता है कि जुलाई तक 1,27,00,000 हम पहुंच चुके हैं। और इसी पेस को देखते हुए, क्योंकि हमारे विंटर डेस्टिनेशन भी और बन गए हैं, पहलगाम को भी विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था लास्ट ईयर से, वो भी खुल गया है। सोनमर्ग में भी अब हमारा जब जेडमोर टनल खुल जाएगी तो सोनमर्ग भी इस बार विंटर के लिए खुल जाएगा।
पिछले 4 सालों में कश्मीर घाटी ने पर्यटकों के आगमन के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कश्मीर प्रशासन के अनुसार सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं और लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया है, जिनमें हजारों विदेशी पर्यटक भी शामिल है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।
कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस देश के एक बड़े वर्ग ने कश्मीर की इसी खूबसूरती को सिल्वर स्क्रीन के जरिए देखा और महसूस किया है, यानी सिनेमा वो धागा है जिसने सालों तक कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़कर रखा। और आज हम डीएनए में कश्मीर और सिनेमा के इसी खूबसूरत रिश्ते का विश्लेषण करेंगे, और आज आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने वर्ष 1964 में आई शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की कली जरूर देखी होगी। डल झील पर फिल्माए गए इस फिल्म के गीत आज भी लोगों को कश्मीर और वहां की खूबसूरत वादियों की याद दिलाते हैं।
चौथी तरक्की कर रही है आज का ये जलसा, इस फिल्म की सिल्वर जुबली, आज की दुनिया में मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो चुका है।
कश्मीर के दिलकश नजारे, हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ और सुनहरे पत्तों से ढके चिनार के पेड़ हमेशा से ही फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को आकर्षित करते रहे हैं। हर निर्देशक की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार कश्मीर में शूटिंग जरूर करे, और इसीलिए भारतीय सिनेमा की कई बेहतरीन और कामयाब फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में की जा चुकी है। چاہے وہ شمی کپور اور سائرہ بانو کی جنگلی ہو، رشی کپور اور ڈمپل کباڑیا کی سپر ہٹ فلم بابی ہو، سنی دیول کی بیتاب ہو، اسی طرح ہائی وے، راضی، حیدر اور بجرنگی بھائی جان جیسی فلموں میں بھی کشمیر پوری خوبصورتی کے ساتھ کسی کردار کی طرح موجود ہے۔ سنی دیول کی فلم بیتاب کے نام پر تو یہاں ایک جگہ کا نام بھی ہے جسے بیتاب ویلی کہا جاتا ہے۔ ورش 1960 کے دشک میں بالی ووڈ کی 9 فلموں کی شوٹنگ کشمیر میں ہوئی تھی۔ 1970 کے دشک میں یہ آنکڑا بڑھ کر 11 ہو گیا۔ 1980 کے دشک میں گھاٹی میں 6 فلموں کی ہی شوٹنگ ہوئی، کیونکہ یہ دشک بیتتے بیتتے آتنکواد کشمیر میں اپنی جڑیں جمانے لگا تھا۔ 1990 کے دشک میں جب آتنکواد چرم پر تھا تب یہ آنکڑا گھٹ کر 4 پر ہی سمٹ گیا تھا۔ حالانکہ ورش 2000 سے 2010 کے بیچ وہاں 15 فلموں کی شوٹنگ ہوئی، جبکہ ورش 2010 سے اب تک یعنی قریب 12 ورشوں میں کل 21 فلموں کی شوٹنگ کشمیر میں ہو چکی ہے۔ یعنی 60 کے دشک سے شروع ہوا کشمیر اور سینما کا یہ خوبصورت رشتہ کئی اتار چڑھاؤ جھیلنے کے بعد بھی اتنا ہی مضبوط اور تازہ بنا ہوا ہے۔ اور آج یہ وشلیشن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج یہ رشتہ ایک نئی اونچائی حاصل کرنے والا ہے۔ آج کشمیر میں ایک بار پھر لائٹ، کیمرا اور ایکشن کی آوازیں گونجنے لگی ہیں، لیکن جو کشمیر فلموں کی شوٹنگ کے لیے اتنا مشہور ہے، اسی کشمیر میں کچھ مہینوں پہلے تک ایک سینما ہال تک نہیں تھا۔ یعنی کشمیر میں بنی فلمیں پوری دنیا بھروں کے سینما گھروں میں بھلے ہی دیکھی جاتی ہو، لیکن انہیں کشمیر کے لوگ کشمیر میں ہی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حالانکہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ورش 1990 کی شروعات تک کشمیر میں قریب 15 سینما ہال تھے اور یہاں لوگ فلمیں بھی دیکھتے تھے، لیکن 90 کے دشک میں آتنکواد کی شروعات کے بعد کشمیر گھاٹی کے سبھی سینما ہال ایک ایک کر کے بند ہو گئے۔ ورش 1999 اور 2000 کے دوران سرکار نے کچھ تھیٹروں کو پھر سے کھولنے کا پریاس بھی کیا، لیکن سرکشا کے کارنوں سے، کٹر پنتیوں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں پھر سے بند کرنا پڑا۔ اور تب سے کشمیر میں ایک بھی ایسا سینما ہال نہیں تھا جہاں بیٹھ کر لوگ اپنے پریوار، اپنے دوستوں کے ساتھ فلمیں دیکھ سکیں اور منورنجن کر سکیں۔ لیکن آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے قریب 4 ورش کے اندر کشمیر میں سینما گھر کی واپسی ہو چکی ہے۔ شری نگر کے شیو پورا علاقے میں بنا یہ ملٹی پلیکس دراصل کشمیر 2.0 کی نئی تصویر ہے، اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ آج کشمیر کٹر پنتھیوں کی وچاردھارا کو خارج کر چکا ہے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کو تیار ہے، اور سینما اس کے اسی سفر کا ایک حصہ ہے۔ اور آج کشمیر میں آئے اس بدلاؤ کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو شری نگر سے ہماری یہ رپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے۔
یہ کشمیر 2.0 کی 70 mm والی تصویر ہے۔ کشمیر سے آرٹیکل 370 کی ودائی ہوئی تو فلم کلچر کی واپسی ہو گئی۔ اب کشمیری بڑے پردے پر فلمیں دیکھنے کے لیے قطار میں لگے ہیں۔ شری نگر کا یہ ملٹی پلیکس بدلتے کشمیر کی سب سے تازہ تصویر ہے، اور اس کے ہاؤس فل ہال اس بدلاؤ کا سب سے بڑا ثبوت۔ شری نگر کے اس اکلوتے ملٹی پلیکس میں 3 اسکرین ہیں اور ہر اسکرین پر روزانہ 4 شو چلائے جا رہے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر شو ہاؤس فل ہیں۔ صرف شری نگر ہی نہیں بلکہ کشمیر کے دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ بڑے پردے پر فلم دیکھنے سینما گھر پہنچ رہے ہیں، اور ان میں بڑی سنکھیا یوواؤں کی ہے۔
یہاں پہ پہلا سینما ہال کھلا ہے آئینوکس کا، اور میں اکثر یہاں آتی ہوں ویکینڈس پہ یا کوئی نئی مووی لگتی ہے، اور مجھے یہاں آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ پہلے ایسا ٹابو تھا کہ مووی سینٹرز کھلیں گے یا پھر سینما ہالز کھلیں گے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا، بٹ میں نے جب بھی آئی ہوں یہاں ہاؤس فل دیکھا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ بھی لوگ وہ کلچر اپنا رہے جو باہر رہ چکا ہے۔ وہ سب ان کیوسک والی لائف سے باہر نکل کے ایک نئی لائف میں جا رہے ہیں جہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کے۔
آج کل کی یہاں کشمیر میں آپ انوکس کی بات کریں گے تو انوکس ایک ایسا پنچ لائن بن گیا ہے کہ یہاں پہ تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ جب باہر جاتے ہیں، جموں سے آگے جاتے ہیں تو ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، اور وہ ماحول ہمیں کشمیر میں پھر سے لانا ہے۔
ورش 1990 کی شروعات تک کشمیر میں کئی سینما ہال تھے،
लेकिन आतंकवाद की शुरुआत के बाद ये थिएटर चरमपंथियों और आतंकवादियों के निशाने पर आ गए। जल्द ही सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए और अब जब करीब 33 वर्ष बाद कश्मीर में बड़े पर्दे की वापसी हुई तो लोगों ने भी इसे हाथों हाथ लिया।
मुझे लगता है रिवाइवल ऑफ सिनेमा एज अ होल होने वाला है यहाँ पे कि और मुझे लगता है वेरी सून ऐसा होगा कि बाहर के हाउसेज आएंगे यहाँ पे पिक्चर बनाने के लिए, उन्हें अपना पूरा यूनिट नहीं लाना पड़ेगा सर, बिकॉज मैंने देखा है यहाँ पे बहुत टेक्नीशियंस आते हैं जो अपनी पिक्चरें देखने आते हैं, यहाँ पे एक्टर्स आते हैं, एक्स्ट्राज आते हैं, सो रिवाइवल ऑफ सिनेमा एज अ होल हो रहा है सर।
कश्मीर में आपको फ्रेम बनाना नहीं पड़ता, वादी के किसी कोने में चले जाएं, कैमरा खोलें, एक बड़ा खूबसूरत मंजर आपके लेंस में आ जाता है। कश्मीर में फिल्म पॉलिसी के अंडर 150 के लगभग फिल्मों को शूटिंग की परमिशन मिली है और भी मुराद उनको मिलेंगी, तो खुशाइन बात है ताकि कश्मीर में शूटिंग होगी, यहाँ का जो फिल्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे लाइटिंग है, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स कश्मीर के वो इनके साथ जुड़ते हैं, काम भी करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को फरोग भी मिलता है। लेकिन वहीं पे कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा और जो ये फिल्में आती हैं इनको कुछ मैंडेटरी रखा हुआ है कि कुछ परसेंटेज ऑफ आर्टिस्ट दे हैव टू बुक फ्रॉम कश्मीर।
सिर्फ सिनेमा घर ही नहीं खुला, कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में एक बार फिर लाइट कैमरा एक्शन गूंजने लगा है। आर्टिकल 370 हटने के 4 वर्षों के अंदर अब घाटी में 400 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कश्मीर में कैमरे की वापसी से स्थानीय कलाकारों की किस्मत के दरवाजे भी खुल गए।
370 खत्म होने के बाद लगभग 180 डिग्री का एकदम चेंज आया है। अगर फिल्म की से ही मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो कश्मीर पहले से जाना जाता था कि बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन रहता था बॉलीवुड का कि यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स होती थी, और अब वो वापस दौर आ गया है। लगभग 400 से ज्यादा फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और ना केवल फिल्म की शूटिंग बल्कि अब तो लोग फिल्म देखने भी जा रहे हैं, सिनेमास खुल चुके हैं और वो भी एकदम पूरे भरे हुए रहते हैं। तो इन ए वे आई कैन से कि पीस इज टोटली प्रिवेलिंग है और अभी हम सही ट्रैक पे हैं।
अस्सी के दहाई तक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो या फिर स्क्रीनिंग, कश्मीर पसंदीदा जगह रही है, लेकिन 90 के दशक में मिलिटेंसी शुरू होते ही सब कुछ बंद हो गया, मगर अब एक बार फिर कश्मीर बॉलीवुड के नक्शे पे नजर आ रहा है। 400 फिल्म शूटिंग्स की अनुमति से लेकर नवीनतम बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स की स्क्रीनिंग कश्मीर के थिएटर में होना ये सुनिश्चित कर रहा है कि बॉलीवुड और कश्मीर का प्यार फिर से पनपने लगा है। कैमरा पर्सन फामोजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।
आपने कश्मीर और सिनेमा के इस कनेक्शन पर हमारी ये रिपोर्ट देखी और अब हम आपको कश्मीर में बदलाव की 5वीं तस्वीर का विश्लेषण करेंगे, और ये तस्वीर तरक्की की तस्वीर है। बीते 4 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे पर काफी काम हुआ है, दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड नेटवर्क में सुधार आया है। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीते 3 वर्षों में 6,912 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं, और ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। इस बदलाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से पहले यानी वर्ष 2018-19 में जम्मू कश्मीर में कुल 9,229 सरकारी प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे, जबकि वर्ष 2022-23 में कुल 92,560 सरकारी प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, यानी 10 गुने से ज्यादा। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में कुल 21 टनल्स पर काम चल रहा है जिनके बनने से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में आए बदलाव की। वर्ष 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में कुल 53 नए डिग्री कॉलेजेस खोले गए, जिसमें 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी शामिल हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी खोले जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट और 15 नर्सिंग कॉलेजेस को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 5 मेडिकल कॉलेजेस और 11 नर्सिंग कॉलेजेस पहले ही शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर का काम भी जारी है। वर्षों तक चली हिंसा, इसका सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के युवाओं को ही हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी घाटी के युवाओं को आतंक के दलदल में धकेलते रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर थमाते रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर का युवा उनके ट्रैप को समझ चुका है। और आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022-23 में 60 लाख से भी ज्यादा युवा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल हुए, जबकि 2018-19 में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख थी। यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद 12 गुना ज्यादा युवा खेलों का हिस्सा बने हैं। हमने आपको जम्मू कश्मीर में विकास की 5 तस्वीरें दिखाई और हमारा ये विश्लेषण देखकर आप इस बदलाव को खुद समझ सकते हैं। डीएनए में अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीएनए में खबरों का विश्लेषण जारी रहेगा।
वक्त इस पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, ये बड़ी खबर है। एसआई सर्वे से जुड़ी इस वक्त हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की आज सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है। सर्वे होगा या नहीं, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। एसआई ने हलफनामा दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआई सर्वे पर किसी भी वक्त अब ये बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू कर दिया है। सर्वे होगा या नहीं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि एसआई सर्वे होगा, लेकिन इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से, आज सुनवाई हुई। इसके अलावा अब कुछ ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जा सकता है, एएसआई सर्वे को लेकर के फैसला सुनाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज होती है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस अर्जी को बरकरार रखा जाता है, यानी कि एएसआई सर्वे करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। और एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था और ये आश्वस्त किया था कि सर्वे से किसी भी तरीके का कोई नुकसान ज्ञानव्यापी परिसर को नहीं होगा। विशाल
देखिए, बिल्कुल किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ सकता है कि एएसआई ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का विरोध करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। पिछले काफी समय से इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही और अब जो सीजेआई है वो अपना आदेश लिखवा रहे हैं, और इस आदेश में सीजेआई ने हाईकोर्ट के आदेश में एएसआई के डीजी के बयान को रिकॉर्ड कर लिया है। साथ ही सीजेआई एएसआई के हलफनामे के पैराग्राफ को भी कोट कर रहे हैं अपने आदेश में, और यहां पर इंतजार करना होगा। देखिए क्या आदेश
किसी भी वक्त आ सकता। सबसे पहले जी न्यूज पर यह खबर जानेंगे आप, एएसआई सर्वे पर किसी भी वक्त अब बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई, अब फैसले की घड़ी है। किसी भी वक्त एएसआई सर्वे को लेकर के बड़ा फैसला आएगा, सर्वे जारी रहेगा या नहीं, सर्वे होगा या नहीं, किसी भी वक्त इस पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, ये बड़ी खबर है। एएसआई सर्वे से जुड़ी इस वक्त हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की आज सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है। सर्वे होगा या नहीं, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। एएसआई ने हलफनामा दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई सर्वे पर किसी भी वक्त अब ये बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू कर दिया है। सर्वे होगा या नहीं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि एएसआई सर्वे होगा, लेकिन इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से, आज सुनवाई हुई। इसके अलावा अब कुछ ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जा सकता है, एएसआई सर्वे को लेकर के फैसला सुनाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज होती है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस अर्जी को बरकरार रखा जाता है, यानी कि एएसआई सर्वे करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। और एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था और ये आश्वस्त किया था कि सर्वे से किसी भी तरीके का कोई नुकसान ज्ञानव्यापी परिसर को नहीं होगा। विशाल
देखिए, बिल्कुल
सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ یہ شعر اکثر دلی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ دلی کو پردوشن کی راجدھانی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم جس خبر کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے اسے دیکھنے کے بعد آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ دیش میں سب سے زیادہ پردوشت جگہ دلی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو اس جگہ لے کر چلیں گے جہاں پردوشن کا استر دلی سے 3 گنا تک زیادہ رہتا ہے۔ یہ جگہ ہے مدھیہ پردیش کا سنگرولی ضلع، جس کی پہچان پورے دیش میں بجلی اور کوئلہ اتپادک ضلع کے طور پر ہے۔ لیکن اب سنگرولی پر پردوشن کا کالا سایہ چھا چکا ہے۔ دنیا بھر کے پردوشت کھیتروں کا ڈیٹا تیار کرنے والی امریکی سنستھا بلیک سمتھ نے سنگرولی کو دنیا کے 10 ٹاپ پولیوٹڈ کھیتروں میں شامل کیا ہے، اور بھارت کی کیندری پردوشن نینترن ایجنسی نے بھی سنگرولی کو دیش کے 22 سب سے پردوشت کھیتروں کی لسٹ میں رکھا ہے۔ نیشنل گرین ٹریبیونل یعنی این جی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سنگرولی ضلع میں پردوشن کی وجہ سے لوگوں کو کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ سنگرولی دیش کا ایک ایسا شہر ہے جہاں ہوا سے لے کر پانی تک میں زہر اس قدر گھل چکا ہے کہ اب انسانوں کی جان تک بن پائی ہے۔ پردوشن کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں کی ہڈیاں گلنے لگی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں اور لوگوں کی اوسط عمر بھی قریباً 5 سال گھٹ رہی ہے۔ دراصل سنگرولی ضلع کی پہچان ہی وہاں رہنے والے لوگوں کی جان کی دشمن بن چکی ہے۔ سنگرولی مدھیہ پردیش کا وہ ضلع ہے جہاں دیش میں سب سے ادھک ماترا میں بجلی اور کوئلے کا اتپادن کیا جاتا ہے۔ یہاں 11 تھرمل پاور پلانٹ، 16 کول مائنز، 10 کیمیکل پلانٹ، 309 کرشر پلانٹ، اس کے ساتھ سٹیل سیمنٹ کے بھی ادیوگ ہیں۔ این جی ٹی کی رپورٹ کے مطابق ان ادیوگوں سے ہر ورش 45 لاکھ ٹن کچرا نکلتا ہے، اس میں سے 35 لاکھ ٹن تو صرف کوئلے کی راکھ ہے۔ یعنی دیش کے ایک بہت بڑے حصے کو بجلی سے روشن کرنے والا مدھیہ پردیش کا سنگرولی خود پردوشن کے اندھیرے میں گھرا ہوا ہے، جس کا اثر نہ صرف وہاں کی آب و ہوا بلکہ وہاں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی زندگی پر بھی پڑ رہا ہے۔ زی نیوز کی ٹیم نے سنگرولی میں پردوشن کے خطرناک استر اور اس کے اثر کی پڑتال کی تو جو تصویر سامنے آئی وہ بے حد چنتا جنک ہے۔ اگر آپ دلی، ممبئی جیسے بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور اکثر شکایت کرتے ہیں کہ پردوشن کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، تو مدھیہ پردیش کے سنگرولی سے ہماری یہ گراؤنڈ رپورٹ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو واقعی اپنے سینے میں جلن اور آنکھوں میں طوفان سا محسوس ہونے لگے گا۔
ہندوستان کا ایک ایسا شہر جہاں لوگ پردوشن کے مارے تل تل کر مرنے کو مجبور ہیں۔ اس شہر میں دلی سے 3 گنا اور مانک سے 10 گنا زیادہ پردوشن ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ہڈیاں گلنے لگی ہیں، 40 سال میں لوگ بوڑھے ہونے لگے ہیں اور اوسط آیو 5 سال تک گھٹنے لگی ہے۔ یہاں کے پانی میں رہنے والی مچھلیاں زہریلی ہو گئی ہیں، ہوا سے لے کر پانی تک سب کچھ زہر ہی زہر ملا ہوا سا دکھتا ہے۔
دن رات دھول اور کوئلے کی راکھ اڑتی ہے، پاور پلانٹس کی چمنیاں کالا دھواں اگلتی رہتی ہیں، سڑکوں پر کوئلے سے لدے واہن دوڑتے رہتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کا سنگرولی ضلع بھلے ہی کوئلہ اور بجلی اتپادن میں نمبر ون ہو لیکن پردوشن کے معاملے میں بد سے بدتر ہے۔
پردوشن یہاں نہ صرف ہوا میں پھیلا ہے بلکہ پانی میں بھی پردوشن بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا ادھارن آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت میں ایک نالے کے اوپر کھڑا ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دو الگ الگ جو تھرمل پاور پلانٹ سے نکلنے والا ویسٹ واٹر ہے، یہ فلائی ایش کا پانی ہے، اور یہ جو کالا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالا پانی بھی اسی پلانٹ سے نکلا ہوا ویسٹ واٹر ہے۔ یہ دونوں ہی پانی مکس ہو کر نالے کے ذریعے آپ بہت دور یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا، ریحن جو ڈیم ہے اس میں یہ سیدھے سیدھے یہاں سے ملتا ہے۔ اس طرح کے کئی نالے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، نالے ہیں جو ریحن ڈیم میں ملتی ہیں، وہ जो प्रदूषित पानी है वहां पर मिलता है, और उसी पानी का फिल्टर होकर, उसी पानी से फिल्टर होकर ये पानी जो है वाटर सप्लाई, जो आसपास की रिहायशी इलाके हैं इस पे वाटर सप्लाई के लिए यहां से पानी को फिल्टर करके छोड़ा जाता है।
प्रदूषण यहां इतनी बुरी हाल है कि मतलब चारों तरफ ही यहां धूल ही धूल रहता है। थोड़ा सा भी हवा आया तो पूरा आसपास के गांव पूरे धूल की मारे पूरे ढक जाती है। और देखिए ये सब पाइप है अगल बगल, यहाँ डैम है, उस डैम का राख जब सूखता है मतलब गर्मी में तब हवा चलता है पूरा मतलब धूल ही धूल चारों तरफ। यहाँ सांस लेना एकदम मुमकिन हो गया है, मतलब तरफ तरफ जिंदगी है जीना मुश्किल हो गया है।
सिंगरौली जिले में एनटीपीसी के पास सोनभद्र जिले के चिल्खा टांड गांव में बदहाली का आलम यह है कि यहाँ हर एक घर छोड़कर लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। यहाँ के चिल्खा टांड गांव के नंदलाल 40 की उम्र में ही बूढ़े हो गए। 15 की उम्र तक सामान्य थे, इसके बाद हड्डियां गलनी शुरू हो गईं। नंदलाल की यह हालत प्रदूषण से जन्मी बीमारियों से हुई है।
ये देखिए क्या है कि यहाँ जो है ना प्रदूषण और पानी से अनेक प्रकार की बीमारी है। कुछ तो मान लीजिए कि उससे भी मतलब पानी से प्रदूषण से भी हम लोग को जो है काफी मतलब परेशानियां होनी पड़ रही है। कितना किसी को टीबी का बीमारी, किसी को इस तरह के अनेक प्रकार की बीमारियां हैं ना पानी से।
इस वक्त मैं सिंगरौली जिले के एनटीपीसी प्लांट के ठीक पीछे चिल्का टांड नाम के एक गांव में हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो दिख रहा है आपको पहाड़ की तरह, ये कोल माइन का हिस्सा है। जो कोल माइन्स को डगिंग किया जाता है तो उसके बाद जो वहां से मटेरियल निकलता है उसको इस तरह से पहाड़ की तरह शक्ल में ये दिखाई दे रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है ये सबसे बड़ा अफेक्टेड गांव है। जब यहां पर पावर प्लांट चलता है तो उसके धूल और धुएं से जो प्रदूषण फैलता है, इस वक्त बारिश मौसम का मौसम है इसकी वजह से यहां पर प्रदूषण नहीं दिखाई दे रहा है, अन्यथा यहां पर बाकी दिनों में काफी प्रदूषण होता है। मरकरी यानी जो पारा होता है वो प्रदूषण में मिलता है और उसी को इनहेल करते हैं, जिससे यहां का न सिर्फ हवा बल्कि पानी भी प्रदूषित हो चुका है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो नंदलाल है उन्होंने अभी अपनी आपबीती सुनाई है, उनके परिवार में उनकी जो बेटी है उनके भी उनका भी कमोबेश यही हाल है। चिल्काटार गांव में हर गांव में ऐसी ही दर्द भरी दास्तां है। इस वक्त मैं राकेश साहू जो कि यहां बरसों से रहते हैं, कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन इनकी दर्द भरी दास्तां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो परिवार है, परिवार के मुखिया है राकेश जी, इनके दो बच्चे हैं आप देख सकते हैं यहां बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही बच्चे जब से चलना सीखे हैं तब से ही लड़खड़ाकर चलना इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद जब डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर्स को भी आज तक इनकी क्या बीमारी है ये समझ में नहीं आई है, क्योंकि इस गांव, ये जो पूरा गांव है ये प्रदूषण की गिरफ्त में रहता है।
ये सर बचपन से नहीं है, जब बच्चे चलने लगे तब हुआ, हमारा भी ऐसा ही था, हम भी सही थे, और धीरे धीरे पता नहीं समझ में आता क्या बीमारी है, और रोजी रोटी चलने में इतनी दिक्कत है कि क्या बताएं आपसे। 60% से अधिक केवल इस गली में जाएंगे तो केवल टीबी से पीड़ित मिलेंगे आपको, 90% केवल टीबी, कुछ गूंगे, कुछ बहरे, और ये विकलांगता ज्यादा अभी जाएंगे गाँव में कम से कम 40% विकलांग मिलेंगे बच्चे आपको।
चिल्का टांड गांव में छोटे छोटे बच्चे भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। हिमांशु जब 1.5 साल का था तो उसे शुगर की बीमारी ने घेर लिया। अब 17 साल का हो चुका हिमांशु इस बीमारी से इस तरह घिर चुका है कि उसे हर दिन इंसुलिन के सहारे जीना पड़ रहा है।
हमारे साथ हिमांशु है जिनकी उम्र करीब 17 वर्ष है, और 1.5 साल की उम्र में इनको जब निमोनिया हो गया था तो इनके घर वालों ने डायग्नोज किया शुगर तो 450, ये रिपोर्ट है 2005 की, जब ये 1.5 साल के थे हिमांशु, और ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 450 यानी 450 शुगर का लेवल उस समय मिला था, और उसके बाद से लगातार शुगर की बीमारी का इलाज चल रहा है।
जैसे चोट वोट हो जाता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, इसमें ये अपने आप होते हैं, ये फेस पे बहुत ज्यादा मतलब घाव टाइप के होते हैं।
ये सिंगरौली में प्रदूषण के साइड इफेक्ट्स हैं जो यहाँ रहने वाले लोग झेल रहे हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी अब भी हैंडपंप, कुएं और नदी के पानी पर ही निर्भर है। इसकी वजह से लोग फ्लोरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।
और आप देख रहे हो कि एक डैम है हरिहन जलाशय, रिहन डैम, ये पूरा जितना जैसे एनसीएल का कोयला बहे, एनटीपीसी का राख बहे, एनसीएल का जो वाशिंग होते हैं, जो तेल बहते हैं, और जो कोयले जाते हैं, राख जा रही है, ये सारा जाता है कहाँ पे, डैम पे। उसी के पानी को लोगों को सफाई साफ करके उसको फिल्टर करके और लोगों तक दिया जाता है। ये स्थिति है। और ये डैम का जो पानी है, जो राख है और जो कोयला है, इससे पारा, मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड का मात्रा इतना ज्यादा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस गांव में जिसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम ना हो। शुगर तो नॉर्मल होते जा रहा है, जैसे ऐसा लगता है कुछ दिन में शुगर हर घर में है। आज स्थिति है, मिर्गी की बीमारी पाई जाती है, सोचिए लोगों का सेंसलेस हो जा रहे हैं।
सिंगरौली की जमीन भी दूषित हो चुकी है। इस जमीन में उगने वाली सब्जियां और अनाज खाकर भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। दूसरा खान गांव के किसान छोटे लाल के पास 8 एकड़ जमीन है। पहले 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल धान हुआ करता था, लेकिन अब पावर प्लांट की वजह से जमीन इतनी खराब हो चुकी है कि इसकी उर्वरक क्षमता बेहद कम हो चुकी है।
परेशानी खेती की प्लांट की वजह से हम लोग का खेती भी बिल्कुल पट हो गया है एकदम। जब खेती उतना उपजाऊ नहीं होती है, अब पहले बहुत होती थी। हाँ, पहले मिट्टी सब खराब हो रही है, ऊपर से गिर रहा तो उन सब बर्बाद फसल को कर रहा है।
सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट से 21,000 मेगावाट बिजली रोज पैदा होती है। इसके लिए 10.3 करोड़ टन कोयले की जरूरत पड़ती है। प्रबंधन नहीं होने की वजह से बिजली उत्पादन के बाद लिक्विड फ्लाई ऐश को खुले नदी नालों में बहा दिया जाता है। कोल माइंस में लगातार कोयले की खुदाई से मिट्टी और राख के पहाड़ खड़े हो चुके हैं, जो कभी भी तेज बारिश में भरभराकर पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं। सिंगरौली में प्रदूषण की जांच और उसके निपटारे के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक ज्वाइंट हाई लेवल कमेटी बनाई गई, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा सामने दिखाई नहीं दे रहा। सिंगरौली में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर भी महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है।
इस पूरे मामले में हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिंगरौली के रीजनल ऑफिसर से बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की काफी कमी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास किसी भी तरह के आधिकारिक जानकारी या आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसके लिए उन्हें दिल्ली या भोपाल से संपर्क करना होगा।
सिंगरौली में प्रदूषण सिर्फ हवा और पानी में नहीं है, बल्कि वहाँ के प्रशासन सिस्टम में भी लापरवाही का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है। जहाँ सिर्फ बातों के जरिए प्रदूषण से निपटने की कवायदें चलती रहती हैं।
पोल्यूशन फैलता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको क्लोज कवर रूप में मतलब स्ट्रिक्टली उसको कंप्लाई करते हुए उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। लो लाइंग एरियाज में इसका जो इसको डिस्पोजल करना है फ्लैश को, वो सब करना है। और हमारी जो पावर जनरेशन कंपनीज है इनके साथ हम इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग उसको फॉलो भी करते आ रहे हैं।
बड़े बड़े दावों से अगर प्रदूषण नियंत्रित हो पाता तो सिंगरौली में प्रदूषण का नामो निशान कब का मिट चुका होता। अगर अभी भी सिंगरौली को प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो आने वाले सालों में यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग बेवक्त और बेमौत मारे जाएंगे। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
सिंगरौली में प्रदूषण की ग्राउंड रियलिटी देखकर अगर आप परेशान हो गए हैं तो अभी दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको सिंगरौली में प्रदूषण के कुछ और गंभीर साइड इफेक्ट्स बताने वाले हैं। रोजाना हजारों टन केमिकल, कचरा, राख और प्रदूषित धुएं की वजह से सिंगरौली का अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित हो चुका है। यहां पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी TDS का लेवल 500 से 700 तक है, जो आमतौर पर 100 होना चाहिए। पानी में फ्लोराइड की मात्रा प्रति लीटर 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिंगरौली के पानी में ये 3 से 4 मिलीग्राम प्रति लीटर है। सिंगरौली के पानी में मरकरी यानी पारे की मात्रा 0.026 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो 0.001 होनी चाहिए। और सिर्फ पानी ही नहीं, सिंगरौली की मिट्टी भी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ प्रति किलो मिट्टी में 10.009 मिलीग्राम पारा मिला है, जबकि ये 6.6 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका असर ये हो रहा है कि सिंगरौली में जमीन से पैदा होने वाली सब्जियां और अनाज खाकर लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और प्रदूषित पानी पीकर भी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में सिंगरौली में TB के 1,836 मरीज मिले थे, जबकि साल 2023 में अब तक 1,000 से ज्यादा TB के नए मरीज सामने आ चुके हैं। और ये सब हो रहा है प्रदूषण की वजह से। लेकिन चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में करीब डेढ़ दशक से सत्ता के सिंहासन पर विराजमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिंगरौली में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता नहीं सताती। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आपको तो समझ आ ही गया होगा कि अगर प्रदूषण हद से गुजर जाए तो क्या होता है। और अब डीएनए की खास पेशकश, आज की पॉजिटिव न्यूज। चेन्नई के 17 वर्षीय गुकेश दुनिया के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। अजरबैजान में हो रहे शतरंज विश्व कप में मिस्रद्दीन को हराकर गुकेश दुनिया के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके साथ उन्होंने न सिर्फ बचपन से अपने आदर्श रहे विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि वो इस समय दुनिया के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे युवा खिलाड़ी भी है। दिलचस्प बात यह है कि गुकेश इस समय के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भी परास्त कर चुके हैं। अक्टूबर 2022 में सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को शतरंज में शिकस्त दी थी। वर्ष 1991 में चेन्नई के ही विश्वनाथन आनंद दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुए थे। तब से लगातार वो इस लिस्ट में भारत के हाईएस्ट रैंक खिलाड़ी रहे हैं। अजरबैजान के बाकू में जब गुकेश ने अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की और विश्वनाथन आनंद से आगे निकले, उस समय विश्वनाथन आनंद ही उस खेल की कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने भी गुकेश को दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनने की शुभकामनाएं दी। हमारी शुभकामनाएं भी गुकेश के साथ हैं। और अब आज का प्रेरक विचार। अमेरिकन राइटर नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफल होने का कोई राज नहीं है, ये आपके द्वारा की गई तैयारियों, कठिन परिश्रम और असफलता से सीखने का नतीजा है। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।